Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. You can call us on the following two lines at 2342-1050 and 2331-4444. If you're calling us from outside Delhi, please do remember to prefix 011. I am Ishan Mittal, and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan.
Namaskar, hazir hain Market Mantra ke ek aur taazang ke saath. Is karyakram mein desh videsh ki aarthik khabron ka jaiza lenge, saath hi nazar dalenge pramukh antarrashtriya share bazaron par, charcha karenge Bombay Stock Exchange aur National Stock Exchange ka performance kaisa raha is saptah. और दोस्तों, आज दिन शनिवार का है. आज का दिन आप लोगों के लिए ही है, हमारे श्रोताओं के लिए. आप चाहें तो अर्थ जगत से संबंधित, इकोनॉमी से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं. दो टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं. नंबर्स हैं 2342-1050 और 2331-4444. दोनों नंबर दिल्ली के 011 एसटीडी कोड के साथ डायल करें. आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट अमन अग्रवाल उपस्थित हैं स्टूडियो में. अमन, आपका बहुत बहुत स्वागत मार्केट मंत्रा में.
नमस्कार.
नाउ लेट्स बिगिन टुडेज एडिशन विद द हेडलाइंस इन इंग्लिश.
डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडाइसेस सेंसेक्स एंड निफ्टी गेन 0.3% दिस वीक. इन द यूएस मार्केट्स द थ्री बेंचमार्क इंडाइसेस रजिस्टर बिगेस्ट वीकली परसेंटेज गेन ऑफ 2024. And global crude oil prices and flat this week on mixed signals.
घरेलू शेयर बाजारों में सप्ताह बढ़त. सेंसेक्स निफ्टी 0.33 अंक बढ़े. अमरीकी बाजारों में भी सप्ताह इस साल की सबसे बड़ी बढ़त. डाउ, नैसडेक और S&P तीनों में बढ़त. कच्चे तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में इस सप्ताह कोई खास बदलाव नहीं. श्रोताओं के पास उनके कॉल को लेने से पहले हम बता दें कि इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में उछाल रहा है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 189 अंक की बढ़त के साथ 72,832 पर रहा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी पूरे सप्ताह के दौरान 73 अंक की बढ़त रही और यह 22,097 पर पहुंच गया. बीएसई स्मॉल कैप में 2% और मिड कैप में 1.5% की बढ़त रही है. यानी कि कुल मार्केट का जो मूड रहा है वो बढ़ने वाला रहा है. अमन, थोड़ी सी जो गिरावट रही थी मार्केट में, थोड़ा करेक्शन जो आया था उसमें वापसी हुई है और एक तरीके से जो सेंटीमेंट्स हैं इन्वेस्टर्स के वो बरकरार रहे हैं. लेकिन कहां आपको उम्मीद लग रही है कि आने वाले सप्ताह में क्या कोई और करेक्शन लेगा या इसी स्तर पर बना रहेगा मार्केट?
मेरे विचार में जो है इसी स्तर पे बना रहेगा मार्केट, क्योंकि एक कुछ और भी न्यूज आई है जहां पे बीएससी ने ट्रेडिंग को T+1 की जगह T+0 करने की कहा है कुछ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर, और 3:30 बजे की जगह 1:30 बजे तक का कहा है. जो सेटल होगा उसी दिन वो सेटल हो जाएगा, जिसकी वजह से काफी सारे मार्केट पार्टिसिपेंट, स्पेशली जो इंस्टीट्यूशनल मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं, एक तो इंडिविजुअल होते हैं इंसान, हम आप जैसे मेरे जैसे, और कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो खरीदते हैं बेचते हैं, तो वो उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी बिकॉज उनको ट्रेडिंग का ऑप्शन और सेटलमेंट का एक ही दिन में अवसर मिल रहा है. तो मेरे विचार से उछाल भी जो अभी देखने को मिला और आगे भी अगले हफ्ते तक एक हफ्ता 10 दिन इस चीज की वजह से उछाल देखने को मिलेगा.
ये T+0 और की बात आप कर रहे थे, इसकी डिमांड दरअसल जो इन्वेस्टर्स से, खास करके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत दिन से कर रहे थे, ये अपने श्रोताओं की समझ के लिए हम थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे कि ट्रेड सेटलमेंट उसी दिन होने से क्या वॉल्यूम में, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसमें बढ़त होगी?
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उसे ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी बढ़त होगी. जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग होती थी पहले पर ट्रेडिंग हो गई, फिर वो सेटल नहीं होता था, अगले दिन जाके पैसा आता था या शेयर आपके अकाउंट में आता था, पर क्योंकि आप सुबह कर रहे हैं तो उसी दिन शाम तक आपके पास पैसा भी आ गया जिसने बेचा है, और जिसने खरीदा उसका शेयर भी आ गया, तो उसके पास अगले दिन का समय है शाम तक डिसाइड करके या अगले दिन की सुबह मार्केट देख के वो खरीदना चाहता है, उसको बेचना चाहता है, और तो वो कर सकता है। तो मेरे विचार में इससे जो वॉल्यूम्स हैं वो नंबर वाइज काफी ज्यादा ग्रो करेंगे, और इसी वजह से जो है हमें उछाल भी देखने को मिलेगा, स्टेबिलिटी भी इस लेवल पे दिखाई देगी।
अभी अगर एक रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो कौन से आपको ऐसे सेगमेंट्स लग रहे हैं, कौन सा सेक्टर ऐसा है कहें जिसमें उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए? ऑफकोर्स हम लोग मार्केट मंत्रा के मंच से हमेशा ये कहते रहे हैं कि कंपनी की प्रोफाइल देख लें, कंपनी के जो बेसिक्स हैं उसको जरूर समझ लें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, किसी भाव में आकर ना करें। लेकिन फिर भी अगर सेक्टर की बात करें तो कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो चुनना चाहिए?
पहली बात तो बहुत आपने अच्छी बात कही, ये बहुत जरूरी है कि जब भी निवेशकर होते हैं वो ये देखें जरूर कि कंपनी के बोर्ड में कौन कौन है, उनकी चेयरमैन की प्रोजेक्शन क्या है, बैलेंस शीट क्या है। अगर समय नहीं हो निर्धारित तो जो मार्केट एनालिस्ट होते हैं उनको सुन के करें। पर जो सेक्टर्स जैसे आपने कहा उसमें अभी फार्मास्यूटिकल है, डिफेंस है, एविएशन है, ऑटोमोबाइल में स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रिक बेस्ड स्ट्रक्चर्स हैं, सोलर सिस्टम्स हैं, बिकॉज सरकार का बहुत तवज्जो है सोलर के ऊपर, तो ये सेक्टर्स जो हैं काफी हद तक तेजी से चल रहे हैं। इवन एजुकेशन में जो फिनटेक बेस्ड एजुकेशन फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं, कंपनीज आ रही हैं एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, बिकॉज भारत सरकार का पिछले दो बजट में भी देखने को मिला काफी ज्यादा फ्रेमवर्क रहा है, और फिनटेक कंपनीज भी काफी आ रही हैं पेमेंट गेटवेज के स्ट्रक्चर में। ऑल्दो कुछ करेक्शन आरबीआई में देखने को मिली, जो पेटीएम में देखने को मिली, बट अदरवाइज काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो इस वजह से
जी
ये सेक्टर्स आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे।
इस पर चर्चा जारी रखेंगे, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनके पास चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मार्केट मंत्रा से जुड़ने के लिए, प्लीज अपना नाम बताएं और सवाल पूछें।
हाँ, हमारा नाम जितेंद्र है, जयपुर से बोल रहा हूँ सर। अभी जैसे पेट्रोल डीजल के
हेलो
जैसे हाँ जितेंद्र जयपुर से बोल रहा हूँ।
हाँ जी बताएं।
हाँ हाँ, अभी पेट्रोल डीजल के जैसे दाम कम हुए हैं तो उसके पीछे क्या मतलब है, कोई अंतर्राष्ट्रीय कारण है, क्या लॉजिक हो सकता है, पहला प्रश्न ये है। और दूसरा कि अभी कौन सा सेक्टर अभी गिरा हुआ है, अभी किसका करेक्शन हुआ, अभी किस सेक्टर में?
देखिए जी, ऐसा है, पहली बार जो पेट्रोल डीजल के दाम है कोई अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ऐसी कोई करेक्शन नहीं आई है। जरूर हमारा जो स्टॉक है, क्योंकि मार्च एंडिंग आ रही है तो कंपनीज के पास स्टॉक होता है, फ्रेमवर्क होता है, उसको देखते हुए सरकारें कुछ कदम लेती हैं, तो उसमें कुछ हमें बेनिफिट आम आदमी को देखने को मिलता है, जो देखने को मिल भी रहा है। इलेक्शन भी आ रहे हैं, उसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है हमेशा इन चीजों पे, वो भी इस बार देखने को हमें मिल रहा है। जहां तक आपने गिरने की बात करी, एक बैंकिंग और जो पेमेंट गेटवेज या जो पेमेंट बैंक्स के नाम पे फ्रेमवर्क से, उनमें थोड़े करेक्शंस देखने को जरूर मिली हैं पिछले कुछ समय में, पर बैंकिंग में कोई ऐसा मेजर झुकाव नहीं आया है। एक मर्जर की वजह से जो HDFC का हो रहा था, दूसरा पेटीएम का जो फियास्को थोड़ा सा हुआ है उसकी वजह से जो करेक्शंस हैं वो करेक्शंस हमें जरूर देखने को मिली, और इससे थोड़ा सा बैंकिंग सबड्यूड रहेगा कुछ समय तक।
Ishan, you wanted to ask something?
Yes, sir. I wanted to ask about the rise in foreign exchange reserves. For two straight weeks, we've seen a record rise, which has almost paralleled the numbers that we had seen 2 years ago. So, what does this kind of trend show? And at the same time, we also saw a record weakening in the rupee against the US dollar. So, how do these pan out for our listeners?
Yes, I think it's a very important question which you've raised. First of all, in terms of foreign exchange reserves, which have been rising tremendously, whenever elections happen in a developing region, a lot of flow of funds come from almost all corners of the world. There is always financing, and as you must have seen the way financing of some of the political parties have happened, and there have been declarations of those funds as well. So a lot of money comes in from overseas as well, and this is not specific with India. When even elections in United States or UK or Germany or any other country happens, this kind of a flow is always observed. That is one component. Secondly, fortunately, the Indian market has been performing extremely well. The Indian corporations and banks and financial institutions have been performing strongly, and their results are positive. So a lot of investment is also coming in terms of buying some of these assets and taking these assets or holdings in these assets going forward. Despite the kind of negative news we saw with some large corporations, corporations, they have been, you know, upward trends for these corporations because of investments coming in. So there is that positivity. We've also seen RBI actually accumulating a lot of gold also, and that also, you know, is a result of some of the foreign exchange reserve. The weakening of rupee is natural to happen when there is so much of flow which comes in.
कुश रायगढ़ से जुड़े हुए हैं और कुश क्या सवाल है आपका पूछने प्लीज
जी नमस्कार सर सर मेरा दो सवाल है पहला ये है कि रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड डेट का स्टॉक पे क्या असर पड़ता है और दूसरा सवाल ये है कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है
देखिए जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो जो भारत सरकार देखिए एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है जो पैसा भारत में रहेगा कितना रहेगा उसके लिए हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं एसएलआर होते हैं एससीआरआर होते हैं अलग अलग रेशियोज होती है उनको बढ़ा के कम करके वो कंट्रोल करते हैं कि मार्केट में कितना पैसा रहे कितना पैसा बैंकों के थ्रू अंदर आ जाए जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं तो वो मार्केट से पैसा खींच जाता है क्योंकि लोग उनको डिपॉजिट्स में डालते हैं बैंकों में रखते हैं फिर बैंक जो है मार्केट में उसको इतना नहीं फेंकते हैं वापस पैसे को तो इस वजह से वो कंट्रोल होने लगता है फिस्कल जो पॉलिसीज होती हैं जो भारत सरकार या कोई भी सरकार स्पेंडिंग करती है खर्चे करती है उसके ऊपर फिस्कल स्पेंडिंग होती है और उसमें सीनियरेज मनी होता है बिकॉज जैसे एक रुपया होता है वो भारत सरकार प्रिंट करती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट नहीं करता है तो इस वजह से वो खर्चे भारत सरकार करती है उसका जो है कोई मापदंड डायरेक्टली नहीं होता है तो वो फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है कि कितना खर्चा करना है कितना खर्चा नहीं करना है जरूर है कि दोनों में तालमेल होना जरूरी है और इस सरकार ने पिछले 6-7 सालों में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब से शक्तिकांत आए हैं तब से जो तालमेल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बना है वो मेरे विचार में बहुत सराहनीय है ऐसा पिछले 20 सालों में हमें देखने को नहीं मिला है जो आपने डिविडेंड की बात करी है वो जो है डिविडेंड्स की डेट्स होती हैं कि कब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाए एक्स डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसका क्या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होता है वो देखने के लिए होता है पहले ये डेट्स बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होती थी बिकॉज कंपनीज डिविडेंड्स रेगुलरली डिक्लेयर करती थी और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी थी बिकॉज जैसे आज हमने बात की T+0 डे के अंदर सेटलमेंट की बात कर रहे हैं पहले कभी कभी 7 दिन 15 दिन एक एक महीना सेटलमेंट डेट का ही होता था फिजिकल शेयर होते थे तो उस समय डिविडेंड्स के ऊपर लोग डिपेंड ज्यादा करते थे तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती थी आज के समय में लोग जो है मार्केट से पैसा कितनी जल्दी रिकवर हो रहा है उसमें डिपेंड करते हैं इसलिए डिविडेंड डेट्स इतनी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट अब नहीं रह गई हैं
एंड मूविंग ऑन टू मुंबई वी हैव आवर नेक्स्ट कॉलर अमित अमित वेलकम टू द शो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन
सर थैंक यू सर सर मुझे पूछना था कि अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपेयर टू बीएससी से कंपनी ज्यादा है 50 कंपनी है तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया कुछ अलग रहता है कि बीएससी टू नेशनल्स में यदि रजिस्टर करना है किसी कंपनी को तो इसका मतलब है वहां इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा रहेगा और मेरा दूसरा सवाल था ये सर कि अभी मार्केट नीचे गिरा है इलेक्शन वगैरह डिक्लेयर हो गए हैं तो इतना सेंटिमेंटल इफेक्ट मार्केट में क्यों आता है हमारी शेयर मार्केट इतना वीक है क्या कि इमोशनल उसका इम्पैक्ट इतना हो जाए थैंक यू
आपने जो क्वेश्चन पूछा पहली बात जो शेयर मार्केट का सेंटिमेंट होता है वो थोड़ा बहुत तो जरूर हमें देखने को मिलता है पर भारत के अंदर पिछले करीबन 15-20 सालों में पहले जैसे इलेक्शन के टाइम पे या नई पार्टी इलेक्ट होती थी उसके से एकदम से मार्केट में उछाल या गिराव आता था वो अब देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है करेक्शंस जरूर होती हैं बिकॉज वो थोड़े बहुत सेंटीमेंट्स जो निवेशकर हैं वो लगाते हैं कि आगे फ्यूचरिस्टिक क्या पोजिशन रहेगी क्या चीज रहेगी तो उस वजह से देखने को मिलता है पर सिर्फ भारत के इलेक्शंस की वजह से नहीं होता उसके अंदर जो है वो ये भी देखा जाता है कि प्रोजेक्शंस मार्केट में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से भी जो निवेशकर आ रहे हैं जो निवेश कर रहे हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वो कैसी चल रही हैं उनका भी इम्पैक्ट रहता है दूसरा प्रश्न जो इनका था वो
निफ्टी 50
के ऊपर था देखिए जी ये निफ्टी जो है 50 और बीएससी जो सेंसेक्स है 30 का ये इंडेक्स है ये मतलब ये है कि हम जो बीएससी है वो 30 कंपनीज को ट्रैक कर रहा है लगातार उसके अंदर और उसमें बीएससी 100 भी है बीएससी इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज कम रजिस्टर्ड हैं या ज्यादा रजिस्टर्ड हैं वो सिर्फ इंडेक्स को दर्शाता है कि कितनी कंपनीज के इंडेक्स को हम ले रहे हैं उस इंडेक्स के अंदर तो ये कहना कि निफ्टी 50 ले रहे हैं और वो हम उधर 30 ले रहे हैं तो इसलिए कम है या ज्यादा है वो चीज हम मापदंड से इस तरीके से नहीं कर सकते हैं इसको
एंड अगेन इन मुंबई वी हैव आवर नेक्स्ट कॉलर हरीश वेलकम प्लीज आस्क योर क्वेश्चन
नमस्कार सर
नमस्ते
अमन सर नमस्ते
नमस्कार जी
सर मैं घड़ी के पास हूँ सर तो मुझे अपना आधार और पैन और मोबाइल लिंक करवाना है तो मैं कहीं जा नहीं सकता उसके लिए क्या है कुछ फैसिलिटी है
इसकी एक समय सीमा थी जो कि फाइन के साथ भी थी, लेकिन अभी वो शायद खत्म हो गई है। ये चेक करना पड़ेगा कि अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है आधार और पैन लिंक कराने का।
नहीं ऐसा है जी, मेरे ख्याल से अभी दोबारा रिसेंटली दोबारा ओपन किया था कि इसको लिंक किया जा सके, बट वो आपको किसी सीए से बात करके पता करवाना पड़ेगा कि वो इस समय ओपन है या नहीं है। मैं इसके बारे में आपको अभी इमीडिएट जानकारी नहीं दे पाऊंगा।
रत्नाकर मुंबई से जुड़े हुए, तीन तीन कॉलर मुंबई से। रत्नाकर जी स्वागत आपका मार्केट मंत्रा में, सवाल पूछ लें।
हेलो गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग।
मेरा सवाल है कि ये जो इलेक्ट्रो बॉन्ड्स के बारे में जो पेपर में आ रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सविस्तर आप बता दीजिए।
देखिए ये सीधे तौर पे तो फाइनेंस से जुड़ा हुआ मामला नहीं है जिसकी हम चर्चा करते हैं यहां पर, शेयर मार्केट की चर्चा करते हैं यहां पर, देश की अर्थनीति की चर्चा करते हैं। जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये प्योरली आप ये समझ लीजिए कि ये राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने का मामला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने, ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर चीजें डाल रखी हैं। ये हमारे चर्चा के विषय से बाहर की चीजें हैं। सो कोई अर्थ जगत से संबंधित, शेयर से संबंधित सवाल हो तो जरूर पूछे। और फिलहाल अगले कॉलर के पास जाने के पहले हम देख लेते हैं कि जो शेयर मार्केट मुंबई के रहे हैं ये कैसा रहा है, यूएस शेयर मार्केट का क्या हाल रहा है।
The S&P 500 ended little change yesterday, but the index registered its biggest weekly percentage gain of 2024 after the Federal Reserve reassured investors about prospects for rate cuts this year. The Dow Jones Industrial Average fell 305 points or 0.8% to 39,478. The S&P 500 lost 7 points to 5,234, and Nasdaq Composite gained 27 points or 0.2% to 16,429. For the week, the S&P 500 gained 2.3% in its biggest weekly percentage advance since mid-December. The Dow climbed 2%, also its biggest weekly gain since mid-December, while Nasdaq rose 2.9%, its biggest weekly percentage jump since mid-January. Earlier in the week, the Fed left rates unchanged but signaled it was still on track for 3 rate cuts this year. Shares of Nike fell nearly 7% a day after the world's largest sportswear maker warned that revenue in the first half of fiscal 2025 would shrink by a low single-digit percentage. So while talking about markets, I'd like to bring you back to the domestic markets. Recently, a U.S. bellwether stock for IT industry paired its guidance, not to give any recommendation, but basically Accenture paired its guidance for revenue for the full year 2024, and it naturally had some impact on the Indian IT stock performance that we saw on Friday. So what does this kind of pare back in revenue forecast hold for the Indian investor? How should they prepare for this kind of payback?
You see, first of all, the most important component to be understood is that Indian markets are completely domestic as of now. We are not a global market, although we are one of the oldest exchange in the world. We were set up way back in 1879 and all, 75. So we are one of the oldest exchanges, with the Bombay Stock Exchange being there. But even then, we have people who come and trade here, but they have to be registered Indian companies if they want to come and trade, whether it is HNI clients or Indian corporations or foreign corporations. So there is no direct interplay like exchanges like London Stock Exchange or NASDAQ or Dow or NSE has in US. So that way there is no direct link between the two, but there is a sentimental link. And secondly, when it comes to profits, Indian companies have research and development wings, software creation wings, and even hardware frameworks which are kept in India for foreign companies, specifically in the US. And that's where when the profits go up, so they tend to give out bonuses to their employees, and they have stock holdings also which are given out both to their foreign, their own domestic countries employees, as well as the Indian counterparts. So that does make some impact, but that's not something which is a direct link between the stock markets per se or an impact on the stock markets.
Thank you, sir. We have our next caller from Kolkata, Vikash. Vikash, welcome to the show. Please, sawal puche.
Namaste, Market Mantra.
Ji, namaste.
Namaskar.
EV sector mein mera nivesh hai. So, 10%, 15% wo correction mein hua, phir aap ja raha hai. So, aise mein mera long term nivesh karna chahiye. 50% abhi return de raha hai.
नहीं,
ईवी सेक्टर की बात कर
रहे हैं। हाँ जी, ईवी सेक्टर जो है काफी प्रॉस्परस होगा, स्पेशली हिंदुस्तान में, क्योंकि 10 से 15 साल का जो रूल लगा है वो कह रही हैं सरकारें कि हो सकता है पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया जाए, तो इसलिए ईवी सेक्टर में काफी ग्रोथ हमें अगले 5 से 7 साल में देखने को मिलेगी। और जैसे हमें अभी रिजर्व्स भी मिले हैं जो जिससे बैटरी बनती हैं, वो रिजर्व्स भी मार्केट में अगले 3 से 7 साल में उतरने लग जाएंगे, तो उससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये जो ईवी की बैटरीज होती हैं उनके अंदर काफी फर्क आएगा। तो मेरे विचार में ईवी मूवमेंट हिंदुस्तान में तेजी पे है, उसमें निवेश काम कर सकते हैं।
यस सर, एंड रिसेंटली वी ऑल्सो विटनेस्ड अ न्यू ईवी पॉलिसी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। इफ यू कुड जस्ट यू नो इलैबोरेट स्लाइटली ऑन दैट, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इट एंड व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वी कैन लुक एट।
यू सी इन द ईवी सेक्टर, जो ईवी सरकार कर रही है, काफी सारी जगह वो सब्सिडी भी दे रही हैं, आप गाड़ी खरीदें, व्हीकल खरीदें, अपनी चीजों को शिफ्ट करें, काफी हद तक इवन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में वो कोशिश कर रहे हैं कि ईवी सेगमेंट को लेके आए। और उसके अलावा जो है वही सेल्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं और चीजों में भी लेके आए। बट ये कहना कि काफी ज्यादा सरकार इस समय बुलिश है पॉलिसी फ्रेमवर्क में तो दिखाई पड़ रहा है, पर जहां तक लोगों तक पहुंचने की बात है, अभी तक मेरे विचार में वो सब्सिडीज भी काफी तक लोगों के पास नहीं पहुंच पाई हैं, तो उसमें भी अभी लैग है काफी ज्यादा। और इस वजह से ये सोचना कि लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा वो नहीं, बट जरूर ये है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि जो सरकार कदमें उठा रही है ईवी की तरफ बढ़ने की, बिकॉज जो कुछ पॉपुलर होती है तो उसकी कॉस्ट नॉर्मली कम होती है, फिर उसके बाद जो हम बैटरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमें एक बहुत बड़ा रिसोर्स मिल गया हिंदुस्तान के अंदर, उसकी वजह से भी जो है फर्क आने को अगले 3 साल में देखने को मिलेगा। तो इसलिए प्रॉस्पेरिटी इसमें ज्यादा है और सरकारों का फोकस पेट्रोल डीजल से मूव करके, बिकॉज पहली बार पेट्रोल डीजल हम इम्पोर्ट करते हैं, करीबन 60 से 65% इम्पोर्ट करते हैं, उसका हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे भी भार पड़ता है, भारत सरकार के खाते पे भी भार पड़ता है, एक आम आदमी पे भी भार पड़ता है, तो वो मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, तो वो एक फायदेमंद रहेगा, इसलिए काफी सारी स्टेट्स कर रही है।
एंड मूविंग बैक टू कोलकाता वी हैव देवरंजन। देवरंजन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
नमस्ते मर्केट मंत्र।
नमस्कार जी।
डिफेंस सेक्टर में मेरा निवेश है।
हाँ जी।
तो अभी करेक्शन हो रहा है, इसमें अभी निवेश करना चाहिए?
बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए। बहुत समय के बाद भारत सरकार ने डिफेंस को एक्सपोर्ट की तरफ लेके गए हैं, ये सरकार लेके गई है पिछले 4-5 सालों में, और इम्पोर्ट उसका हमें रेवेन्यू भी हो रहा है उससे, और डिफेंस में बढ़ोतरी भी हो रही है, और इस सरकार ने टेक्नोलॉजी को यूज करके डिफेंस को बढ़ोतरी की तरफ लेके जा रहे हैं और बढ़ा भी रहे हैं। मतलब पहले तो हिन्दुस्तान की सरकारें जो हैं वो बाहर से सिर्फ खरीदने में डिफेंस को यूज करती थी, यहां पर अब इंडियनाइज्ड और इंडिजीनियस ग्रोथ डिफेंस की तरफ दिखाई दे रहा है, तो मेरे विचार में डिफेंस अगले 2 से 3 साल में काफी अच्छा क्षेत्र रहेगा।
विकास अगले कॉलर होंगे फरीदाबाद से। विकास, बहुत बहुत स्वागत मार्केट मंत्रा में, क्या सवाल है आपका?
नमस्कार सर।
नमस्कार।
सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होते हैं,
बिल्कुल,
ऐसे अगर हमें सिल्वर में इन्वेस्ट करना हो तो सर उसके लिए हमें क्या करना होगा ताकि मेकिंग चार्जेस वगैरह इन सब का जो भी फंडा होता है वो खत्म हो जाए और हम डायरेक्ट इन्वेस्ट कर पाए?
देखिए पहली बात, जो गोल्ड के अंदर दो तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, एक तरीका बॉन्ड है जैसे आपने कहा, दूसरा है गोल्ड को डायरेक्टली खरीदना। जो लोग गोल्ड को खरीदते हैं उसमें मेकिंग चार्जेस का चक्कर नहीं आता है, बिकॉज वो गोल्ड बार्स या बिस्किट्स खरीदते हैं जो मिलते हैं मार्केट में ज्वेलर्स के पास, उसमें या कॉइन्स खरीदते हैं उसमें ये मेकिंग चार्जेस का चक्कर नहीं आता है, क्योंकि वो ज्वेलरी में ही आता है सिर्फ। दूसरा जो सिल्वर के अंदर है, वहां पे भी बार्स मिलते हैं, बिस्किट्स मिलते हैं, कॉइन्स मिलते हैं, वो आप खरीद सकते हैं। इसी तरीके से जो कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं उसके ऊपर भी आप इन बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं, तो इसी तरीके से जैसे गोल्ड के हैं ऐसे सिल्वर के भी हैं। फर्क यह है कि जो भारत सरकार के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो भी गोल्ड बॉन्ड्स का निकालते हैं, ईटीएफ वगैरह निकालते हैं, वो आप डायरेक्टली निवेश कर सकते हैं, वहां पे अभी सिल्वर का नहीं है, बाकी सिल्वर के भी बॉन्ड्स हैं वो आप खरीद सकते हैं मार्केट से। सर
एंड बैक टू कोलकाता वी हैव रवि। रवि प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
जी नमस्ते मार्केट मंत्री।
नमस्कार।
प्राइवेट सेक्टर का बैंक है ये, अभी बहुत करेक्शन हुआ।
हाँ जी सर।
तो रेट कार्ड भी अमेरिका से ये न्यूज आ रहा है कि रेट कट होगा, तो इसमें प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का कितना इजाफा होगा?
देखिए पहली बात तो आप हिंदुस्तान के बैंकिंग सेक्टर को अमेरिका के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ना हम अमेरिका में रह रहे हैं ना हिंदुस्तान का जो बैंक है उसका कोई लेन देन अमेरिका के बैंक के साथ है। तो जो फेड ने कहा है वहां पे जो उन्होंने 2020, 21, 22 में एक्सटेंसिव फिस्कल स्पेंडिंग करा सरकार ने, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन का प्रेशर आया हुआ है, बहुत मार्केट गिरा हुआ है, रिसेशन सिचुएशन हो रहा है, जो जेरेमी पावेल है वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको कंट्रोल करने की, तो उसको कंट्रोल करने का नियंत्रण तरीका यही उनको नजर आ रहा है कि रेट कट करें। बट ये कि होगा नहीं होगा अभी नहीं पता, बिकॉज जो अभी लास्ट मीटिंग अभी अभी खत्म हुई है एक दिन पहले, उसमें उन्होंने कट नहीं किया है, जबकि इन्होंने अनाउंस पहले कर दिया था कि हम कट करेंगे। तो कब करेंगे ये क्लियर नहीं है, बिकॉज नॉर्मली साल में 4 या 5 बार ये लोग मिलते हैं, उसके अंदर एक बार तो निकल ही चुका है। दूसरी बात, हिंदुस्तान का जो बैंकिंग सेक्टर है बहुत सुदृढ़ है, बड़ा स्ट्रांग है। 2007 में भी जब क्राइसिस आया था वर्ल्ड में तब भी रहा था, अभी भी जो है बड़ा स्ट्रांग है। ये करेक्शंस जो हमें देखने को मिल रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसका प्रोएक्टिव रोल है कि एक आम आदमी का पैसा कहीं ना जाए। और हमने देखा है पिछले 30 सालों के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कभी भी कुछ प्रॉब्लम आई है मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, कोई और प्रॉब्लम आई बैंकों के साथ, फेलियर की प्रॉब्लम आई, उनको इतना स्मूथली मर्ज किया है कि किसी एक आम आदमी का पैसा नहीं डूबा है, एक रुपया भी नहीं डूबा है। तो मेरे विचार में भारत सरकार का जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका जो स्ट्रेंथ है वो बैंकिंग सेक्टर को लेकर आगे चलेगा।
And thank you, sir, for that. Moving on to our last news item. Global crude oil prices ended flat this week as possibility of a ceasefire in Gaza weakened crude benchmarks, while shrinking U.S. rig count cushioned the fall. Brent crude oil futures ended the week at $85.43 a barrel, while U.S. crude settled at $80.63 per barrel. U.S. Secretary of State Antony Blinken said on Thursday he believed talks in Qatar could reach a ceasefire agreement between Israel and Hamas. Meanwhile, the U.S. dollar was set for a second week of broad gains after Swiss National Bank's surprise interest rate cut on Thursday bolstered global risk sentiment. Stronger dollar makes oil more expensive for investors holding other currencies. And with that, before we close, a reminder of the headlines. Domestic benchmark indices Sensex and Nifty gained 0.3% this week. In the U.S. markets, three benchmark indices registered biggest weekly percentage gain of 2024. And global crude oil prices in flat this week on mixed signals. That's it in this edition of Market Mantra. For now, we shall take your leave. Thanks, listeners.
Namaskar. Market Mantra.